قال الله تعالى في مقام الصفر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے، جس طرح ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے. زندگی کیا ہے؟ تھرکتا ہوا ننا صدیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے. یا سرے مجھگا غم کا تھرکتا ہوا آنسو، پلک چھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے. رونے والے آنکھ کی پلکوں پہ آنسو ہوتے ہیں نا، وہ بس پلک چھپکنے کے محتاج ہوتے ہیں، پلک چھپکی اور وہ مٹی میں مل گئے. یہی انسان کی زندگی ہے کہ انسان دنیا میں آیا ایک مدت لے کر، پھر ایک دن اس کو یہاں سے جانا ہے اور اپنے اپنے وقت پہ انسان چلا جاتا ہے. زندگی انسان کی ہے مانند مرغے بے نوا، شاخ پر کچھ دیر بیٹھا چہچہایا اڑ گیا. اس طرح ایک پرندہ درخت پر آ کر بیٹھتا ہے اور تھوڑی دیر چہچہاتا ہے، پھر اڑ کے چلا جاتا ہے. یہی ہماری زندگی کی مثال ہے کہ ہم بھی اس دنیا میں آئے ہیں، کچھ دنوں کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں، پھر یہاں سے ہم چلے جاتے ہیں. اور یہ زندگی کی مدت زیادہ نہیں ہے، تھوڑی سی ہے. اس امت کی عمر نبی علیہ السلام نے فرمایا بین سبعین و ستین، ساٹھ ستر کے درمیان. یعنی ایسا بھی ہوگا کہ بچہ پیدا ہوا فوت ہو گیا، اور ایسا بھی ہوگا کہ سو سال سے اوپر کو کے فوت ہوا. لیکن اگر گراس ایوریج نکالیں گے، اس امت کی عمریں ساٹھ ستر کے درمیان ہوگی. تو ساٹھ ستر سال کی عمر تو بہت زیادہ نہیں ہے. پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کی عمریں ہزار سال ہوا کرتی تھیں. قرآن مجید میں ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر نو سو سال سے زیادہ تھی. قرآن مجید سے ساتھ تو نو سو سال عمر ہوتی تھی، ایک ہزار سال عمر ہوتی تھی. ایک عورت ایک نبی علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت میرے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، لڑکپن میں، زیادہ لمبا زندہ نہیں رہتے، آپ ان کے لیے دعا کریں. انہوں نے پوچھا کتنی عمر میں؟ کہنے لگا کوئی دو سو سال کا ہو کے فوت ہو جاتا ہے، کوئی تین سو سال کا. تو وہ نبی علیہ السلام مسکرائے. عورت کہنے لگی آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ ان کا کہ اللہ کی بندی، قرب قیامت میں ایک امت ایسی بھی آئے گی جن کی عمریں ہی سو سال سے تھوڑی ہوں گی. تو جب اس عورت نے یہ سنا تو اس نے کاؤنٹر کوشچن کیا، پوچھا ان سے کہ حضرت جن کی عمریں سو سال سے تھوڑی ہوں گی، کیا دنیا میں رہنے کے لیے گھر بنائیں گے؟ کہا ہاں، وہ گھر بھی بنائیں گے، شادیاں بھی کریں گے، زندگی بھی گزاریں گے. تو عورت نے ٹھنڈی سانس لی. تو انہوں نے پوچھا ٹھنڈی سانس کیوں لی؟ کہنے لگی اگر میں اس وقت ہوتی جب عمر ہی سو سال سے تھوڑی ہے، تو اتنی تھوڑی مدت تو میں ایک سجدے میں ہی گزار دیتا. تو ہماری عمریں زیادہ نہیں ہیں، ساٹھ ستر سال کیا عمر ہوتی ہے، تھوڑی سی عمر ہے. بس ہم نے اس کو گزار کے دنیا سے جانا ہے. ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ میرے بندو تم جاؤ دنیا میں اور آخرت کی تیاری کر کے آؤ، مجھے راضی کر کے آؤ. چنانچہ چند نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس وحزم الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اکثر ہم ذکر للموت، وہ جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھے. وہ اکثر ہم استعداد للموت، اور وہ جو موت کی خوب تیاری کرتا رہے. اولئک الاکیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ. ذہبوا بشرف الدنیا و کرامت الاخرہ، دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی یہی لوگ لے گئے جو موت کو یاد رکھتے ہیں اور موت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں. یہ عقل مند لوگ ہیں، یہ سمجھدار لوگ ہیں. نہ چاہے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے कि इंसान अपनी मौत की तैयारी करे, इंसान को कोई भरोसा नहीं। कितने लोग हैं एक्सीडेंट से फौत हो जाते हैं, कितने लोग हैं हार्ट अटैक हो जाता है और वजह बन जाती है, पता भी नहीं चलता क्या होना था। हमारे करीबी दोस्त थे, वो लॉस एंजलिस में रहते थे कैलिफोर्निया में, छुट्टी का दिन था, उन्होंने अपने सारे घर वालों को कहा कि चलो आज बीच पे जाके खाना खाते हैं। तो सब घर वाले तैयार हो गए, चुनाचे सब छोटे बड़े मर्द औरतें उन्होंने अपने घर से खाना पैक किया और तैयारी की और बीच पे जाके कि हम सब फैमिली वाले इकट्ठे मिलके वहाँ खाना खाएंगे। उन्होंने एक ऐसी जगह तलाश की जहाँ लोग ज़्यादा नहीं थे ताकि अकेले वो फैमिली वाले आराम से बैठ कर सुकून से खाना खा सकें। अल्लाह की शान, जब खाने का दस्तरखान लगाया, उनके 18 साल का बेटा, उसको ऐसी तबीयत ज़रा ख़राब हुई। थोड़ी देर के बाद उसको हार्ट अटैक हुआ, 18 साल के बच्चे को, और वहीं पर उसकी वफात हो गई। आप बताएं, पूरी फैमिली बीच पे गई है खाना खाने के लिए और खाना तैयार है, दस्तरखान पे लगा हुआ है, अभी खाना शुरू नहीं किया, 18 साल के बेटे की वफात हो गई। कौन जानता था कि वो बीच पे जा रहे हैं और वहाँ से वापसी पे बच्चे का जनाजा साथ उठा के लाएंगे। कोई नहीं जानता था। तो मौत के बारे में कोई नहीं जानता कब आएगी, अल्लाह जानता है कब आनी है मौत। लेकिन बंदे को चाहिए कि वो उसके लिए तैयार रहे। चुनाचे ज़िंदगी इंसान की इस तरह इसकी मिसाल दी गई है कि जब बच्चा आता है तो उसके कान में अजान कही जाती है और दूसरे कान में तकबीर कही जाती है, इकामत कही जाती है, और फिर उसके बाद नमाज खड़ी होती है। क्योंकि जब इकामत हो जाए तो नमाज शुरू करते हैं, और नमाज ख़त्म हो जाती है तो इंसान नमाज से फारिग हो जाता है। तो यही मिसाल दी कि इंसान जब तू दुनिया में आता है, तेरे एक कान में अजान दे दी जाती है, दूसरे कान में इकामत कह दी जाती है, और तेरी ज़िंदगी नमाज की मानद है। जैसे नमाज पढ़ के बंदा फारिग हो जाता है, बस तू ये ज़िंदगी की नमाज पढ़ के फारिग हो और फिर दुनिया से तुझे चले जाना है। तो हमारी अजान भी हो चुकी, हमारी इकामत भी हो चुकी, अब तो बस नमाज पढ़ के हमने यहाँ से जाना है। यही इंसान की ज़िंदगी का मिसाल है। और ये नहीं है कि भाई हमने जाना है, हमसे पहले भी आए, अरबों खरबों आए और दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिन क़ब्लिकल खुल्द, हमने कोई ऐसा बंदा दुनिया में नहीं बनाया कि जिसने हमेशा रहना हो। नहीं, हमेशा रहना नहीं है, दुनिया से जाना ही है। जब हम आए ही जाने के लिए हैं तो भाई अक्लमंदी तो ये है ना कि हम उसकी तैयारी करें। अक्लमंदी ये है कि हम जाने की तैयारी करें। अगर तैयारी नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। इसकी मिसाल यूँ समझें, एक आदमी एयरपोर्ट पे है, उसने फ़्लाइट लेनी है। अब फ्लाइट में आधा घंटा बाकी है, वो सोचता है चलो यार यहाँ पे मैं जो ये दुकानें लगी हुई हैं, अच्छे अच्छे सेल फोन पड़े हैं, तो मैं कोई सेल फोन यहाँ से ख़रीद लेता हूँ। अब अगर कि वो सेल फोन ख़रीदे, कुछ और ख़रीदे, लेकिन उसको अपनी फ़्लाइट के टाइम का तो ख्याल रखना है कि कब मुझे फ़्लाइट जानी है। अब अगर वो भूल गया और वो हर सेल फोन का फंक्शन उससे डिस्कस कर रहा है और पूछ रहा है, और उसे याद ही नहीं कि फ़्लाइट का टाइम है या नहीं, तो फ़्लाइट तो मिस हो जाएगी उसकी। यही हमारा हिसाब है, हम दुनिया के कामों में ऐसे मशगूल हो जाते हैं कि हमें मरना याद ही नहीं आता, याद ही नहीं आता कि हाँ हमने जाना है दुनिया से। जब मौत याद नहीं होती, फिर इंसान गफलत के काम करता है, गुनाहों के काम करता है, फिर इंसान अल्लाह ताला को नाराज़ कर बैठता है। तो हमें चाहिए कि हम मौत की तैयारी करें। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल से इस बात को समझाया है। उन्होंने समझाया है कि देखो, एक बंदा था जो जंगल में जा रहा था, अचानक उसने सुना उसके पीछे शेर आ रहा था, शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनी। वो घबरा गया कि मेरे पीछे शेर आ रहा है, मैं कहाँ जाऊँ। अब करीब में कोई ऐसा दरख्त भी नहीं था कि जिसके ऊपर वो चढ़ जाता शेर से बचने के लिए। एक कुआं था, उसने सोचा चलो मैं कुएं में छलांग लगा देता हूँ, जब शेर चला जाएगा तो मैं बाहर निकल आऊँगा। लेकिन जब उसने नीचे झांक के देखा तो उसको कुएं के पानी के अंदर एक सांप तैरता हुआ नजर आया। अब वो और परेशान, पीछे शेर है और आगे सांप इंतज़ार में है, न जाए मानदन न पाए रफ्तन, जाएँ तो कहाँ जाएँ। फौरन उसको ख्याल आया कि कुएं की दीवार के साथ घास उगी हुई थी कि मैं घास पकड़ के लटक जाता हूं, न ऊपर रहूं कि शेर खाए, न नीचे जाऊं कि मुझे सांप बाइट करे, मैं दरमियान में लटक जाता हूं। उसने जल्दी से वो घास को पकड़ा और लटक गया। अब ऊपर शेर इंतज़ार कर रहा है और नीचे सांप उसके इंतज़ार में है और ये उस घास को पकड़ के लटक रहा है। अब अल्लाह की शान के जब घास को पकड़ के लटक रहा था तो इसने देखा कि दो चूहे हैं, एक का रंग सफ़ेद है और एक का रंग काला है, और वो उस घास को काट रहे हैं जिस घास को पकड़ के ये लटक रहा है। तो परेशानी और बढ़ गई कि ये क्या बना। अब इस परेशानी के आलम में जब इसने दाएं बाएं देखा तो इसने देखा कि बिल्कुल साथ ही शहद का छत्ता लगा हुआ था और मक्खियां उड़ गई थीं और शहद का छत्ता शहद से भरा हुआ था। तो इसके जहन में ख्याल आया, मैं चखूँ तो सही शहद कैसा है। अब एक हाथ से इसने घास पकड़ी और दूसरे हाथ से वो शहद उंगली से लगाई और मुंह में डाली तो इसको खूब मज़ा आया। अब ये शहद चाटने में लग गया, न इसको शेर याद है, न इसको सांप याद है, न इसको काला और सफ़ेद चूहा याद है। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह ये मिसाल दे के समझाते हैं कि देखो बंदे, मलकुल मौत तुम्हारे पीछे शेर की तरह लगा हुआ है और आगे कब्र का अजाब सांप की तरह तुम्हारे इंतज़ार में है और तुम जिंदगी के कमज़ोर से घास को पकड़ के लटक रहे हो, और ये जो काला और सफ़ेद चूह है ये दिन और रात हैं, ये तुम्हारी ज़िंदगी के घास को काट रहे हैं, और ये जो शहद का छत्ता है ना ये दुनिया की लज्जतें हैं, तुम इन लज्जतों में ऐसे मस्त हो कि तुम्हें न दिन का पता न रात का पता, लगे हुए हो बस। हमारा हाल वाकई ऐसा ही है कि हम ऐसे गुम हो जाते हैं दुनिया की ज़िंदगी में कि हमें अपनी आखिरत याद ही नहीं आती, हमें अल्लाह को मनाना याद ही नहीं आता, हम गफलत में पड़ जाते हैं, गुनाहों की ज़िंदगी में लग जाते हैं। हालांकि हम दुनिया के बारे में जितने फ़िक्रमंद होते हैं हमें आखिरत के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि आखिरत की तैयारी का तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। देखें, दुनिया में रिस्क पहुंचाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, फरमाया ला नसअलुका रिज़्का नहनु नरज़ुकुका, हम तुम्हें रिस्क पहुँचाएँगे। तो रिस्क पहुँचाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है हम सुबह से लेकर शाम तक उसके पीछे लगे हुए हैं कि हमें रिस्क मिल जाए, और जो अल्लाह ने हमें कहा कि तुम तैयारी करो, हमारा काम हम उससे पारे, हमें याद ही नहीं होती, नमाज़ें कज़ा कर लेते हैं, तिलावत कई कई दिन नहीं होती, नेकी की तरफ रुझान नहीं होता। तो ये हमारी बहुत बड़ी नालायकी है कि हम अपनी मौत को भूल जाते हैं। मौत की तैयारी करना ही अक्लमंदी है और वही इंसान अल्लाह के यहाँ भी अक्लमंद कहलाता है। एक वक्त आएगा हमें आगे जाना पड़ेगा और हमें आगे ये सारा कुछ जो है वो भुगतना होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने खोल खोल के बता दिया, कब्र में ये होगा, हशर में ये होगा, क़यामत के दिन ऐसे अमाल तुलेंगे, ऐसे जाना पड़ेगा, फुल सिरात से पार करना, एक एक चीज़ उन्होंने तफसील से बता दी। अब हम यकीन कर लें तो हमारा फ़ायदा है, ना करें तो हमारा नुकसान है, लेकिन एक वक्त आएगा कि हम आँखों से देख लेंगे। इसकी मिसाल इमाम गजाली ने यूँ दी है, वो फरमाते हैं कि एक अंडा है जिसके अंदर मुर्गी का बच्चा बन गया है और उसने बाहर निकलना है। अब उस मुर्गी के बच्चे को कोई अंडे के अंदर जाकर बताए कि तुम थोड़ी देर में अंडे के खोल से बाहर निकलोगे तो एक ऐसे जहान में जाओगे जहाँ 6 फुट का इंसान होगा और 50-50 फुट की बिल्डिंग होंगी, ऊंची मंजिला बिल्डिंग होंगी, और पहाड़ होंगे और समुंदर होंगे। अब वो अगर मुर्गी का बच्चा कहे कि अच्छा मैं देखता हूँ ये सब चीज़ें कहाँ हैं, तो अंडे के अंदर रहते हुए तो ना उसे इंसान नज़र आएगा, न दरख्त नज़र आएंगे, न पहाड़ नज़र आएंगे, न कुछ नज़र आएगा। लेकिन अगर वो मान ले तो जैसे ही वो खोल को तोड़ के बाहर निकलेगा अपनी आँख से सब कुछ देख लेगा। तो हम भी इसी तरह मान लें कि आखिरत में क्या होना है तो हमारा फ़ायदा है, नहीं तो जैसे ही आँख बंद होगी ना हम सब कुछ अपनी आँखों से देख लेंगे। इसलिए फिर मरते हुए फिरौन ने भी देखा था आखिरत को तो कहने लगा था आमन तो गर्ब मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान ले आया। उसने भी अल्लाह को मान लिया था जो खुद खुदाई का दावा करता था, मगर उस वक्त मानने का क्या फ़ायदा। फ़ायदा तो यह है कि हम अभी इस बात को माने और आखिरत की तैयारी करें। एक और अजीब मिसाल उन्होंने दी है, बहुत प्यारी, फरमाते
अच्छा
हैं दरिया था और उसमें एक बड़ी मछली थी और एक छोटी मछली थी, अब छोटी मछली ने देखा, ज्यादा हिलजुल न करें
जी, औरतों में आवाज नहीं जा रही, आवाज अंदर नहीं जा रही।
तो एक मछली बड़ी थी और एक मछली छोटी थी। छोटी मछली ने देखा कि एक गोश्त का टुकड़ा लटक रहा है पानी में। अब उसका दिल चाहा कि मैं इसको खा लूं। फिर उसने सोचा मैं बड़ी मछली से पूछ लेती हूँ। उसने बड़ी मछली से पूछा कि ये गोश्त का टुकड़ा लटक रहा है, क्या मैं खा लूं? उसने कहा खबरदार, करीब न जाना। क्यों? उसने कहा इसलिए कि ये जो गोश्त का टुकड़ा लटक रहा है ना, इसके साथ एक कांटा है और कांटे के साथ एक डोरी है और डोरी पीछे एक शिकारी के हाथ में है, फिशरमैन के हाथ में है। तुम जैसे ही इसको मुंह लगाओगी ना, तो ये कांटा तुम्हारे हलक में फंस जाएगा और वो शिकारी तुम्हें पीछे डोरी की वजह से खींच लेगा। फिर वो तुम्हें जाके अपने घर अपनी बीवी के हवाले करेगा और उसकी बीवी वो छुरी से तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर देगी और टुकड़े करके फिर तुम्हें मिर्च मसाला लगाएगी। फिर उसके बाद वो तेल की कढ़ाई को गर्म करेगी और अच्छी तरह उबलते हुए तेल में डालेगी तो तुम्हारे कबाब बन जाएंगे। फिर वो सारे घर वालों को बुलाएगी, दस्तरखान बिछाएगी और प्लेटों में डाल के देगी तो लोग आएंगे और 32-32 दांतों से तुम्हें पीस पीस के खाएंगे। अब ये सारी बात सुन के वो छोटी मछली कहने लगी कि अच्छा मैं देखती हूँ ये सब लोग कहाँ हैं। अब दरिया के अंदर वो हज़ार चक्कर लगाए, न उसको फिशरमैन नज़र आएगा, न उसकी बीवी नज़र आएगी, न उनका किचन नज़र आएगा, न इसको तेल वाला थाली नज़र आएगी, कुछ नज़र ही नज़र आएगा। मान ले तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानेगी तो जैसे ही खाएगी और खींचेगी तो खुद बहुत सारी मनाजिल अपनी आंखों से देखेगी। यही हाल हमारा है कि हम अल्लाह ताला के बातें, नबी अलैहिस्सलाम की बातों पर मान लें और उसके मुताबिक नेकी की ज़िंदगी गुजार लें तो इसमें हमारा फ़ायदा है। अगर नहीं गुजारेंगे तो एक वक्त आएगा कि हम अपनी आंखों से देखेंगे और फिर मानेंगे, सब कुछ मानेंगे, मगर उस मानने का फिर फायदा नहीं होगा। इट विल बी टू लेट, वो ज्यादा देर हो जाएगी। अकलमंद इंसान वो है जो दुनिया में इस चीज का एहसास करे और अपनी आखिरत की तैयारी में लग जाए। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा कि आखिरत की तैयारी जो है ना, वो कोई जिमनास्टिक नहीं करनी होती, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी होती, कोई ब्रिस्क वॉक नहीं करनी होती कि आप सुबह सुबह ब्रिस्क वॉक करें और आप सुबह एक्सरसाइज करें और वर्कआउट करें। नहीं नहीं आखिरत की तैयारी बड़ी सिंपल है। क्या? पहली बात कि हम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें जो हम कर चुके हैं, पहली बात। और फिर उसके बाद हम नेक बन के ज़िंदगी गुजारें, नेकी करें, नमाज पढ़ें, अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ, जो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद हैं हम उन दोनों को अदा करें। यह है आखरत की तैयारी। आखरत की तैयारी हमें यह नहीं कहती कि तुम घरों को छोड़ दो, जंगलों में चले जाओ, तुम घरों को छोड़ दो, पहाड़ों पे चले जाओ, तुम आज के बाद अच्छे खाने नहीं खा सकते, अच्छे लिबास नहीं पहन सकते। नहीं नहीं हमारी शरीयत इतनी खूबसूरत है कि हमारी शरीयत हमें कहती है कि तुम बेशक अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करो, मगर अल्लाह के गीत गाओ ना, अल्लाह का शुक्र तो अदा करो। अब ये तो हक बनता है ना कि जिस परवरदिगार ने ये नेमतें दी हैं हम उस परवरदिगार को का शुक्र अदा करें कि अल्लाह आपका शुक्र है, आपने हमें ये नेमत दी, ये नेमत दी, ये नेमत दी। अब अगर शुक्र भी अदा ना कर सकें तो ये तो ज्यादती है ना। आज कोई बंदा कोक पेप्सी पेश कर दे ना, हम उसको भी थैंक यू कह देते हैं। कितनी अजीब बात है कि जिस परवरदिगार ने सेहत जैसी नेमत दी, दस्तरखान पे उसने कई किस्म के खाने लगवाए, हम पेट भर के खाना खाते हैं और खाना खाने की दुआ पढ़ना भूल जाते हैं। तो हमने रब को तो थैंक यू ना कहा ना, रब को थैंक यू कहना तो भूल गए। ये हमारी ज्यादती है कि नेमतें हम इस्तेमाल करते हैं, नेमतें हम लेते हैं, मगर नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह को याद नहीं करते, अल्लाह से गाफिल हो जाते हैं। इसलिए शरीयत कहती है कि तुम नेकी की ज़िंदगी गुजारो और अल्लाह को याद करके ज़िंदगी गुजारो। अब देखें जो साधु लोग होते हैं बुद्ध मत मज़हब में, उनके यहाँ ये दस्तूर है कि साधु सुबह जब उठता है तो नंगे पाँव नंगे सर वो लोगों के दरवाजे पर जाता है और उनसे भीख मांगता है और जो वो देते हैं उसमें से वो खाता है, पका के नहीं खा सकता। अब बताएं कि उनको कितना ह्यूमिलिएट होना पड़ता है कि सुबह सुबह नंगे सर नंगे पाँव अब जाओ जी लोगों के घरों से मांग के खाओ। शरीयत हमारी कितनी खूबसूरत है, वो कहती है कि तुमने कमाया है तुम्हारे बैंक अकाउंट में मिलियन हैं, बहुत अच्छी बात है, तुम उनसे अपना खाना बनवाओ और शाम से बैठ के अपने घर वालों के साथ मिल के खाओ, तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना करो कि जब तुम उसको खाओ तो शुक्र तो अदा करो ना अल्लाह का। तो खाने से पहले की दुआ भी पढ़ो, खाने से बाद की भी दुआ पढ़ो। अब ये कौन सा मुश्किल काम है? अल्लाह को भूल जाएं तो ये हमारा कसूर है ना, हम दुआएं ना पढ़ें तो ये हमारा कसूर है। अल्लाह चाहते हैं कि नेमतों को इस्तेमाल करो। शरीयत ये नहीं कहती कि तुम फटे कपड़े पहनो, शरीयत कहती है कि औरतें अगर हजारों रियाल के या हजारों दिरहम के बने हुए सूट पहने तो उनके लिए जायज है, मगर नीयत हो अपने खाविंद के लिए पहने। ये तो गलत बात है ना कि अल्लाह ने माल पैसा दिया है और वो गैर मर्दों को दिखाने के लिए कपड़े पहने। ये तो गलत बात है ना, अल्लाह ने माल पैसा दिया है और वो दूसरी औरतों पर अपनी बर्तरी जाहिर करने के लिए फख्र के तौर पर पहने। शरीयत कहती है ये अच्छी बातें नहीं है, तुम तो अपनी नीयत को ठीक करो। नीयत क्या? कि मैं अपने खाविंद को अच्छी लगूं। चुनाचे अगर कोई औरत 1,00,000 दिरहम का एक सूट पहनती है और अपने खाविंद की नीयत करती है तो उसका वो सूट पहनना भी इबादत बन जाएगा। कितनी खूबसूरत शरीयत है। शरीयत ने कब कहा है किसी को कि तुम फटे कपड़े पहनो? नहीं, शरीयत कहती है कि हाँ अगर तुम्हारे पास वसाइल नहीं है और कपड़े फट गए, अब तुम इसको पैबंद लगा के पहनो तो इस पर भी सवाब मिलेगा। तो जिसके पास वसाइल नहीं वो पैबंद वाले कपड़े पहने, हजरत उमर ने 17 पैबंद लगा के कुर्ता पहना था, और जिनके पास है वो अगर कीमती तरीन कपड़े पहने मगर अल्लाह का शुक्र अदा करें तो जिस तरह पैबंद वाले को सवाब मिलेगा, कीमती कपड़े पहनने वाले को भी सवाब मिलेगा, इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। तो शरीयत सब्र करने वाले को भी सवाब देती है, शुक्र करने वाले को भी सवाब देती है। अब शरीयत ये कहती है कि देखो तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो, तुम्हें हमने घर दिया, घरवाली दी, औलाद दी, तो तुम्हारा एक काम है कि तुम अपनी बीवी को खुश रखो। अब ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना कि घर में इंसान बीवी को खुश रखे। मीठा बोल बोलना पड़ता है, प्यार से बात करनी पड़ती है, बीवी बेचारी तो कुर्बान होने को तैयार होती है, उसका क्या। लेकिन होता क्या है कि शैतान बदबख्त हमारे पीछे लगा है, हम जैसे घर से बाहर निकलते हैं कोई आती जाती नजर पड़ती है तो हमें वो शक्ल अच्छी लग जाती है। शरीयत कहती है कि ये जो है ना अय्याशी है और ये ख्वाहिश परस्ती है, ये जायज़ नहीं है। तो शरीयत ने कहा कि नहीं, तुम गैर महरम से आंखों को बंद करो और जो तुम्हारी बीवी है तुम उसके साथ मोहब्बत प्यार का वक्त गुजारो। अब शरीयत ने कितनी खूबसूरत बात कही है, हम घर में भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहें, बीवी भी खुश रहें, बच्चे भी खुश रहें, तो इसी में आखिरत की तैयारी भी है। चुनाचे शरीयत का हुक्म सुन लीजिए, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है, जब कोई बंदा अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है और बीवी अपने खाविंद को देखकर मुस्कुराती है, अल्लाह ताला उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। तो अल्लाह ताला का खुश होना कितना आसान है। अल्लाह चाहते हैं कि मियाँ बीवी आपस में तुम खुश हो, कि एक दूसरे के साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। तो अल्लाह ताला को खुश करना तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें सवारियाँ दी हैं, हम बेशक सवारी इस्तेमाल करें, घोड़े हैं हमारे पास, गाड़ियाँ हैं, ये लैंड क्रूजर है या लेक्सस है या फैंटम है, जो मर्जी गाड़ी है, आप तैयारे को इस्तेमाल करें। अल्लाह ने अगर आपको वसाइल दिए हैं, शरीयत मना नहीं करती, मगर शरीयत ये कहती है कि जब आप सवारी पे बैठें तो सवारी की जो दुआ है वो ज़रूर पढ़ लें ताकि अल्लाह को याद रखें। अब हम भूल जाते हैं दुआएँ, ये तो हमारा कसूर है ना कि हमने अल्लाह से नेमतें तो ले ली लेकिन उन नेमतों को देने वाले को भूल गए। तो ये क्या बात हुई भाई कि नेमतें उससे मांगते हैं और नेमतें देने वाले को भूल जाते हैं। शरीयत कहती है ये जायज़ नहीं है भाई, तुम उसको याद रखो, उसकी याद वाली ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम्हें अजर मिलेगा इसके ऊपर। चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा तख्त दिया था कि वो अपने लश्कर को साथ लेके उसके ऊपर बैठते थे और वो तख्त उड़ता था और एक जगह से दूसरी जगह उनको पहुँचा दिया करता था। अल्लाह ने उनको ऐसी बादशाही दी जो इंसानों पर भी थी, हैवानों पर भी थी, जिन्नों पर भी थी, परिंदों पर भी थी, खुशकी की मखलूक पर भी थी, तरी की मखलूक पर भी थी। आप बताएं कैसी बादशाही होगी। सुभान अल्लाह, इतने बड़े बादशाह थे लेकिन साथ ही साथ अल्लाह के नबी भी थे, लिहाजा उन्होंने अपने रब को राजी किया। अल्लाह ने कुरान पाक में उनकी तारीफें फरमाई, नेमल अब्द इन्नहु अवाब, वो मेरा कितना अच्छा बंदा था, वो तो मेरी तरफ रजू करने वाले थे। तो अगर ऐसी बादशाही की जिंदगी गुजार के भी अल्लाह फरमाते हैं मेरा कितना अच्छा बंदा, वो तो मेरी तरफ रजू करने वाला था, तो फिर हमारे लिए क्या रुकावट है। तो हम भी अल्लाह की नेमतों से इस्तेमाल तो करें, मगर अल्लाह को याद रखें, अल्लाह को भूले नहीं। अल्लाह को भूल जाना ये सबसे बड़ा गुनाह है। भाई क्यों भूले हम अपने मोहसिन को, कौन भूलता है? हमने तो देखा है सर्कस में ये शेर चीता दरिंदे हैं, लेकिन जो इनको गोश्त खिलाता है ये उसका भी लिहाज करते हैं, और वो इनके मुंह में हाथ भी डाल दें तो ये अपने उस बंदे को, उसके हाथ को नहीं काटते। तो अगर दरिंदे भी अपने मोहसिन का लिहाज कर लेते हैं तो हम इंसान हैं, अल्लाह ने अकल दी है, क्या हम अपने रब का ख्याल नहीं कर सकते कि अल्लाह हमारा परवरदिगार है, उसने हमें पैदा किया, उसने हमें रिज़्क़ नवाजा, उसने हमें औलाद से नवाजा, उसने हमें घर दिया। याद रखें जो कुछ हमारे पास है हमारा नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ है। आप गौर करें, अल्लाह बिनाई ना देते हम अंधे होते, गोयाई ना देते हम गूंगे होते, समात ना देते तो हम बहरे होते, सर पे बाल ना देते हम गंजे होते, हाथ पांव ना देते लूले लंगड़े होते, सेहत ना देते हम बीमार होते, अल्लाह इल्म ना देते हम जाहिल होते, अल्लाह ताला हमें माल ना देते हम फकीर होते, अल्लाह ताला इज्जत ना देते हम जलील होते। आज जो हम इज्जतों की जिंदगी गुजारते फिर रहे हैं, ये उस मौला का करम और एहसान ही तो है। तो हम उसको क्यों ना याद करें, हम उसको क्यों ना शुक्र अदा करें। हम तो कुर्बान जाएं अपने अल्लाह पे, ए अल्लाह आपने हमें लाखों से बेहतर हाल दुनिया में रखा है, लाखों से बेहतर हाल में दुनिया में रखा है। हम तो अल्लाह के सामने सजदा करें ऐसी मोहब्बत का कि सर उठाने को दिल ना चाहे कि अल्लाह आपने तो हमें इतने ऊपर हमारी मेहरबानियां फरमाई। जब हम इस तरह अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला इन नेमतों को और बढ़ाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं लैन शकर तुम ला अजीदन्नकुम, अगर तुम नेमते का शुक्र अदा करोगे हम अपनी नेमतें और ज्यादा तुम्हें अता करेंगे, इतनी देंगे कि तुम बस बस करोगे, इतनी नेमतें तुम्हें हम देंगे लेकिन तुम शुक्र अदा करो। तो इसको मौत की तैयारी कहते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक बना ले। अब देखें शरीयत के मुताबिक जिंदगी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। इसका आसान तरीका मैं बताऊं कि दिन में 5-7 काम ऐसे हैं कि जो हम रोजाना करते हैं। मसलन हम रोजाना नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, रोजाना खाना खाते हैं, रोजाना नमाज पढ़ते हैं, रोजाना अपने बीवी बच्चों के साथ बैठते हैं, वक्त गुजारते हैं, दफ्तर जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। ये 5-7 काम हैं जो डेली हम रूटीन से रिपीट कर रहे होते हैं। उन 5-7 कामों को आप सुन्नत के मुताबिक करना सीख लें, उलमा से राबता करें। वो जी खाना सुन्नत के मुताबिक कैसे खाते हैं वो बताएंगे, आप दस्तरखान लगा के खाना खाएं और ऐसे हाथ धोएं और दुआ पढ़ें और ये दुआ पढ़ें, तो हम उस खाने को सुन्नत के मुताबिक खा लें। हमने कपड़े बदलने हैं, हम कपड़ों को सुन्नत के मुताबिक बदल लें। नहाने हैं, सुन्नत के मुताबिक नहा लें। हम सुन्नत के मुताबिक गाड़ी पे सफ़र करके घर से जाएं और वापस आएं। बीवी बच्चों में बैठने हैं, हम सुन्नत के मुताबिक बीवी बच्चों के अंदर वक्त गुजारें, मोहब्बत प्यार से वक्त गुजारें, बच्चों पे शफ़क़त दिखाएं, बच्चों की छोटी मोटी आरज़ुओं को पूरा करें, खुश करें उनको ताकि वो खुश होकर ज़िंदगी गुजारें, उनको तालीम दें। अब ये 8-10 काम अगर हमने सुन्नत के मुताबिक बना लिए तो आप समझ लें कि आपकी ज़िंदगी 75% सुन्नत के मुताबिक वैसे ही बन जाएगी, बाकी तो कोई काम कभी कभी हुआ करता है। तो अपनी आदत को सुन्नत के मुताबिक ढाल लें तो ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक आराम से हो जाएगी। कपड़े तो आपने पहन नहीं है, अभी आपकी मर्ज़ी है, आप इसको काफरों के नमूने के मुताबिक भी कपड़े पहन सकते हैं और चाहें तो नबी शाम की सुन्नत के मुताबिक भी पहन सकते हैं। सुन्नत के मुताबिक भी साफ़ सुथरे कपड़े पहन सकते हैं, खूबसूरत कपड़े पहन सकते हैं, और आप चाहें तो आप वो काफरों के डिज़ाइन पहने कि जो बाहर मुल्कों के बने हुए हों और आप उसमें अंग्रेज़ नज़र आएँ। ये तो चॉइस हमारा है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे गैरों का चॉइस क्यों करते हो, तुम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबहत इख्तियार करो, बस उनकी सुन्नत के मुताबिक तुम रहो तो तुम्हारी ज़िंदगी इबादत बन जाएगी। हमारे कपड़े पहनना इबादत बन जाएगा, हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक हमारा नींद सो जाना भी इबादत बन जाएगा। हत्ता के उलमा ने लिखा है कि जो बंदा सुन्नत के मुताबिक टॉयलेट में चला जाए और फारिग होके बाहर निकल आए, टॉयलेट में जाना फारिग होके आना उसके लिए इबादत बन जाएगा। अब जिस मोमिन का फारिग होना कज़ाए हाजत से भी इबादत बन जाता हो तो मोमिन के तो मजे हैं। बस हम एक काम करें कि हर काम का बारे में तहकीक करें, भाई सुन्नत क्या है, हम उसके मुताबिक उस काम को करने की आदत डालें। ये आखिरत की तैयारी है। न कारोबार रोकना पड़ेगा, ना आपको घर छोड़ना पड़ेगा, ना आपको भूखा रहना पड़ेगा, ना आपको प्यासा रहना पड़ेगा, कुछ नहीं रहना पड़ता। मन पसंद के खाने खाएं, सुन्नत दुआ पढ़ें पहले भी और आखिर भी, अल्लाह ताला आपको उस खाने को इबादत बना देंगे। और इसी तरह आप जो काम भी कर रहे हैं सुन्नत के मुताबिक करें और अच्छे अखलाक अपनाएं। किसी बंदे का दिल दुखाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, ये अल्लाह को बहुत नापसंद है। चुनाचे नबी सलाम ने इरशाद फरमाया, अकमलुल मोमिनीन ईमाना अहसनहुम खुल्का, कि सबसे कामिल मोमिन वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे। तो भाई अच्छे अखलाक के साथ जिंदगी गुजारे, इसमें कौन सी रुकावट है हमारे लिए? कोई जरूरी तो नहीं कि हम बेसिंग के जानवर बन के रहें, जरा सी बात इससे भी सींग लड़ा रही है, इससे भी लड़ा रही है, इससे भी नाराज, उससे भी नाराज। ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरों के लिए राहत का सबब बने, दूसरों के लिए खुशी का सबब बने। चुनाचे बाद लोग इतने अच्छे अखलाक वाले होते हैं कि उनको देख के दिल खुश हो जाता है। इतने हम्बल, इतने अच्छे अखलाक वाले बात करते हैं, दूसरे बंदे का दिल मोह लेते हैं। और जो दूसरे का एहसास करने वाला हो ना, वो बंदा अल्लाह को बड़ा प्यारा, बहुत प्यारा। आप गौर करें कि एक बुजुर्ग थे, मुहद्दिस थे, तो उनकी वफात हो गई। ख्वाब में नजर आए तो किसी ने पूछा, हजरत आगे क्या बना? कहने लगे बस अल्लाह ने मगफिरत कर दी। उनका अच्छा, आप तो बड़े मुहद्दिस थे, हदीस पढ़ाते थे, बड़े शागिर्द थे। उन्होंने नहीं, हदीस की वजह से या तुलबा की वजह से मेरी मगफिरत नहीं हुई, एक छोटा सा काम था जिसकी वजह से बख्शिश हुई। भाई कौन सा छोटा सा काम था? कहने लगे कि मैं एक दफ़ा बैठा किताब लिख रहा था, तो उस जमाने में कलम दवात होती थी, तो मैंने कलम में स्याही लगाई और जैसे ही मैंने दवात से कलम निकाली, एक मक्खी उसकी टिप के ऊपर आके बैठ गई। तो मेरे जहन में ख्याल आया, ये मक्खी प्यासी होगी, ये पीना चाहती है इस इंक को, तो चलो इसको पीने दो। तो मैंने कलम को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लिया, रोक लिया एक जगह। वो एक सेकेंड के लिए मक्खी बैठी और उड़ के चली गई। अल्लाह को ये अमल पसंद आया कि तूने एक मक्खी की प्यास का ख्याल रखा, चलो मैं तुम्हें जहन्नम की प्यास से निजात देता हूँ, जन्नत अता फरमाता हूँ। आप बताएं कि मक्खी की प्यास का हम अगर ख्याल करेंगे, इस पर अगर जन्नत मिलती है, तो फिर जन्नत और सस्ती इससे ज्यादा कैसे मिल सकती है? है दुनिया की कोई चीज कि जो इतनी सस्ती मिले? अल्लाह ने जन्नत को इतना सस्ता कर दिया। हारून रशीद की बीवी थी जुबैदा खातून, मलका थी, नेक थी। उसकी वफात हुई तो किसी को ख्वाब में नजर आई, उसने पूछा मलका आगे क्या बना? कहने लगी अल्लाह ने बस मेरी मगफरत फरमा दी। उसने कहा तेरी मगफरत तो होनी है, तूने तो नहर जुबैदा बनवाई थी और उस नहर से तो लाखों लोगों को फायदा हुआ था। उसने कहा कोई नहीं, नहर जुबैदा का तो तज़करा ही नहीं आया, उससे पहले ही अल्लाह ने माफ़ कर दिया। उसने कहा भाई किस बात पे अल्लाह ने माफ़ किया? कहने लगी कि एक दफ़ा मुझे भूख लगी हुई थी और मैं बैठी दस्तरखान पे खाना खा रही थी, तो मैंने अपना लुकमा तोड़ा और उसको सालन से लगाया कि मैं खाती हूँ। जैसे ही मैंने सालन से लगाया और लुकमा मुँह की तरफ ले जाने लगी, तो अजान की आवाज आई मस्जिद में, अल्लाह अकबर। कहने लगी जब मैंने अजान की आवाज सुनी तो मैंने फील किया कि मेरा जो दुपट्टा था ना सर के ऊपर, वो पूरा नहीं था, थोड़ा सा सर नंगा था। तो मैंने लुकमे को रख के पहले अपने सर को ढांप लिया अल्लाह के नाम की अदब की वजह से, और फिर लुकमा खाया। अल्लाह ने फरमाया कि तूने मेरे नाम के अदब की वजह से जो लुकमा खाने में थोड़ा सा डिले किया, मुझे ये अमल बहुत अच्छा लगा, चल मैंने तेरी मगफरत करवाई। जो परवरदिगार आलम एक लुकमे में थोड़ा सा डिले कर लिया जाए अल्लाह के नाम को सुनकर, उससे खुश हो जाता है। मक्खी के लिए एक लम्हा के लिए कलम को रोक लिया जाए, उससे अल्लाह खुश हो जाता है। तो अगर हम इंसानों का दिल खुश करेंगे और इंसानों में भी मुसलमानों का दिल खुश करेंगे और मुसलमानों में भी घर के जो लोग हैं, जो सेम ब्लड है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपने बच्चे हैं, अपनी बीवी है, उनका दिल खुश करेंगे, अल्लाह ताला इस पर हमें कितना जल्दी हमें अब नेमत अता फरमाएंगे। तो इसलिए शरीयत पर चलना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हम नहीं चल पाते तो ये हमारे नफ्स की खवासत होती है, ये हमारे पीछे शैतान लगा होता है, ये हमारे शैतान नुमा दोस्त होते हैं जो हमें उल्टे सीधे कामों में लगा देते हैं। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए ताकि हम अल्लाह को राजी करने वाली जिंदगी आसानी के साथ गुजार सकें। और और दुनिया में तो बहरहाल हमें जाना है, आज नहीं तो कल। आप गौर करें, एक वक्त था कि जब मुझे अपना जमाना आज भी याद है कि छोटे छोटे बच्चे होते थे और मस्जिद में ऐलान होता था कि फलां आदमी फौत हो गया है मोहल्ले का और उसका जनाजा इतने बजे होगा, तो मेरे वाले साहब कहा करते थे, ये मेरा क्लास फेलो था, हम दोनों मिलके खेला करते थे, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, फलां था, तो हम सुनते रहते थे। फिर कुछ साल गुजरे तो मेरे अपने वाले साहब भी फौत हो गए, फिर कुछ और साल गुजरे, फिर ऐलान होता था फलां बंदा फौत हो गया, तो मेरा जो बड़ा भाई था ना वो कहता था, ये मेरा स्कूल का क्लास फेलो था, हम फलां क्लास में इकट्ठे थे। तो ऐसे लगता है जैसे एक जनरेशन चली गई, फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन का वक्त आ गया, फिर भाई ने कहना शुरू कर दिया, फिर कभी ऐलान होता तो मेरे दूसरे नंबर के जो भाई थे वो कहते थे, ये तो मेरा क्लास फेलो था, बड़ा अच्छा दोस्त था, हम तो मिलके फुटबॉल खेलते थे, हम तो मिलके कबड्डी खेलते थे, और ये तो फलां था। फिर उसके बाद मेरे तीसरे नंबर के भाई, फिर चौथे नंबर के भाई, सब इसी तरह होता रहा होता रहा होता रहा, और आज इतने सालों के बाद ऐसा वक्त आ गया है कि मस्जिदों में ऐलान होता है फलां बंदा फौत हो गया, तो मुझे याद आता है, ओह ये तो मेरा क्लास फेलो था। ऊपर वाले चले गए, अब हमारे एज ग्रुप की वारी आ गई, अब ये चले जाएंगे, कल हमारा भी ऐलान हो जाएगा, फिर हमारी औलाद कहा करेगी, ये तो मेरे अब्बू का दोस्त था और ये तो मेरे अब्बू का साथी था, वो चला गया। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते। हम सब मेहमान हैं, आज हम मेहमान हैं, हमसे पहले हमारे वालदैन मेहमान थे दुनिया में, वो चले गए, आज हम हैं, कल हम भी चले जाएंगे, फिर हमारी औलादें होंगी, तो ये सिलसिला दुनिया का इसी तरह चलता रहेगा। हमें चाहिए कि हमें अल्लाह ने दुनिया में मौका दिया है, हम इस मौके से फ़ायदा उठा के नेकोकारी की ज़िंदगी गुजारें और नेक बनकर ज़िंदगी गुजारें, अच्छे अखलाक की ज़िंदगी गुजारें। किसी को हर्ट करना, किसी को बुरा कहना या किसी के साथ बुराई का मामला करना, अल्लाह को ये सख्त नापसंद है, अल्लाह इसको पसंद नहीं करते। शरीयत कहती है, देखो भाई तुमने बोलने हैं तो सच बोलो, झूठ क्यों बोलते हो, तुम गीबत क्यों करते हो, ऐसे लफ्ज़ क्यों निकालते हो कि दूसरे का दिल दुखे, तुम दूसरे को दिल मत दुखाओ, तुम दूसरे को खुश करो। तो शरीयत पे चलना तो बहुत आसान है, बल्कि शरीयत के अलावा ज़िंदगी गुजारना वाकई बहुत मुसीबत है। जो लोग शरीयत का ख्याल नहीं करते इतना परेशान होते हैं, इतना परेशान होते हैं कि उनको सुकून नहीं मिलता, परेशान ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो मौत की तैयारी आसान है कि हम अपने काम काज के दौरान, घर बार के दौरान हर काम को सुन्नत के मुताबिक करें, हर काम को करते हुए अपने रब को याद करें, अच्छे अखलाक की ज़िंदगी गुजारें, एक अच्छे इंसान बनकर रहें। इस तरह अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमसे खुश होंगे और हमारे लिए अल्लाह ताला आखरत में अजर को तैयार कर रखेंगे। चुनांचे जो इंसान नेकी की ज़िंदगी गुजारता है तो जब उसकी वफात का वक्त आता है, हदीस पाक में आता है कि जन्नत के फरिश्ते आते हैं उस बंदे का रूह कब्ज़ करने के लिए, और वो बंदा लेटा हुआ होता है और उसके सीने के ऊपर वो जन्नत से एक रुमाल लेके आते हैं जिसके अंदर खुशबू होती है जन्नत की, उसके सीने के ऊपर रख देते हैं और वो खुशबू वो बंदा सूंघता है तो उसको बिल्कुल दर्द का एहसास नहीं होता। आप यूँ समझें कि ये एनेस्थीसिया है वहाँ से आया हुआ, जैसे दुनिया में किसी का ऑपरेशन करना हो तो उसको एनेस्थीसिया देते हैं कि इसको दर्द का एहसास ना हो। अल्लाह ताला ने भी अपने मोमिन बंदों के लिए जन्नत के एनेस्थीसिया का इंतज़ाम कर दिया, वो फरिश्ते जन्नत का रुमाल ला के सीने पे रख देते हैं, ऐसी खुशबू होती है कि उस बंदे को तकलीफ़ का एहसास ही नहीं होता, और जैसे मक्खन में से बाल निकाल लिया जाता है ऐसे आसानी के साथ इस बंदे की रूह को कब्ज़ कर लिया जाता है, बंदे को पता भी नहीं चलता। फिर रूह कब्ज़ कर लेते हैं तो ये चूँकि अल्लाह का मकबूल बंदा होता है, अल्लाह ताला फिर फरिश्तों को फरमाते हैं, देखो ये मेरा बंदा है, अब इसकी रूह को कब्ज़ कर लिया, अब इसका जनाजा उठेगा तो जहाँ घर से लेके कब्र तक इसका जनाजा जाएगा, फरिश्तों तुम जाओ और रास्ते के दोनों तरफ कतार बांध के खड़े हो जाओ। चुनाचे मोमिन का जनाजा निकलता है और मोमिन के रास्ते के दोनों तरफ फरिश्ते कतार बांध के खड़े होते हैं उसके एहतराम में। अल्लाह अकबर, हदीस पाक में आता है आसमान के वो दरवाजे रोते हैं जहाँ से लिए उसके लिए रिस्क उतारा जाता था, जमीन के वो टुकड़े रोते हैं जहां बैठ के वो अल्लाह की इबादत किया करता था, ऐसे बंदे के लिए आसमान और जमीन भी रोते हैं। फिर जब उसको कब्र में दफन किया जाता है तो हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाते हैं कि जाओ मेरे बंदे को कह दो नम कनौमत अल उरूस, ए बंदे दुल्हन की नींद सो जा, ये मेरा बंदा दुनिया से थका मांदा आया है, इसे कहो कि ये दुल्हन की नींद सो जाए। अब इस पर मुहद्दिसीन ने तफसील लिखी है, ये भी कह सकते थे आराम की नींद सो जाओ, सुकून की नींद सो जाओ, मेरे बंदे मजे की नींद सो जाओ, ये क्या बात हुई है मेरे बंदे दुल्हन की नींद सो जाओ। तो उन्होंने उसका जवाब लिखा, असल वजह यह है कि दुल्हन जब रात को सोती है ना, उसको वो जगाता है जो उसका खाविंद उसका महबूब होता है। दुल्हन की आंख खुलती है तो खाविंद के चेहरे पे पड़ती है, उसको दूसरा कोई नहीं जगा सकता। तो अब देखें, दुल्हन की आंख खुली तो महबूब के चेहरे पर पड़ी, ये मोमिन आज कब्र में सो रहा है, फिर क्यामत के दिन जब इसकी आंख खुलेगी इसके सामने अल्लाह का चेहरा होगा, ये अपने रब का दीदार करेगा और इसको कहा जाएगा कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इर्जई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो ये अपने रब के चेहरे का दीदार करेगा और खुश होगा कि मेरे रब ने मुझे अपना दीदार अता फरमा दिया। ये है वो लोग जो आखिरत की तैयारी करके दुनिया से जाने वाले लोग होंगे, और जो तैयारी करके नहीं जाएंगे फिर उनकी तो पिटाई होगी कब्र में भी और हशर के दिन भी उनके लिए जिल्लत होगी, और जहन्नम में तो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए मुसीबत होगी। अल्लाह ताला हमें नेकोकारी की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बड़े जो थे ना वो अपनी मौत की तैयारी किया करते थे, वो दुनिया में नेकी करते थे, ऐसे अमल करते थे जो अल्लाह को पसंद आ जाए, ताकि मौत के वक्त अल्लाह ताला से वो मांग सकें कि या अल्लाह मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी, तुम मेरे अमलों को कबूल कर ले। चुनाचे एक बुजुर्ग थे, उनके बारे में आता है कि उनकी बकाला की दुकान थी, बकाला यानी ये ग्रॉसरी की दुकान थी। अच्छा, उनके पास लोग आते थे, गरीब लोग ग्रॉसरी लेने के लिए, तो उस ज़माने में चांदी के रुपए होते थे, आजकल तो प्लास्टिक के होते हैं और कागज़ के होते हैं रुपए, बिल जो बने होते हैं नोट होते हैं, लेकिन उस ज़माने में चांदी के रुपए होते थे। हमने भी अपने बचपन में वो ज़माना देखा है, तो वो रुपए ले जाते थे और देते। अच्छा, वो रुपए जब ज़्यादा हाथों में आते जाते थे ना, तो उनके ऊपर का जो प्रिंट था वो घिस जाता था कई मरतबा, और पता भी नहीं चलता था कि लिखा हुआ क्या है। तो जब घिस जाता था और पता भी नहीं चलता था तो वो कहते थे कि ये खोटा सिक्का है, तो वो नहीं लेते थे दुकानदार। हमें खुद कई मरतबा बचपन में पैसा लेके जाते थे और दुकानदार वापस लौटा देता था, भाई ये खोटा सिक्का है लेके आओ, इसका प्रिंट पढ़ा ही नहीं जाता। तो उनके पास अगर कोई खोटा सिक्का लेके आता था तो वो देख तो लेते थे कि सिक्का खोटा है, लेकिन उसको लेके रख लेते थे, सौदा दे देते थे। अल्लाह ने उनको बड़ा दिल दिया था, चुनाचे लोग आते थे और वो खोटे सिक्के लेके रखते जाते थे कोने में और उनको सौदा देते जाते थे। कहते हैं कि जब उनकी वफात का वक्त आया, उस्मान खैराबादी रहमतुल्लाह उनका नाम था, तो लेटे हुए थे और अचानक उन्हें फील हुआ कि अब मेरा आखिरी वक्त आने वाला है। उठ के बैठ गए और अल्लाह से दुआ मांगने लगे, और अल्लाह से ये दुआ मांगी, ए अल्लाह मैं सारी जिंदगी तेरे बंदों से खोटे सिक्कों को कबूल करता रहा, अल्लाह तू भी मेरे खोटे अमलों को कबूल कर ले। अल्लाह मैं सारी जिंदगी तेरे बंदों से खोटे सिक्कों को कबूल करता रहा, अल्लाह तू भी मेरे खोटे अमलों को कबूल कर ले। देखा, आखिरत की तैयारी की हुई थी, अल्लाह को ये अमल दिया और उसके बाद कलमा पढ़ा, फौत हो गया। तो हम भी आखिरत की तैयारी करें, नेकी करें दूसरों के साथ, हमदर्दी करें, किसी के दुख बांटें, किसी को किसी का गम जो है अपने ऊपर ले लें, और किसी की खिदमत करें। हम जब किसी के दिल को खुश करेंगे इसके बदले फिर अल्लाह ताला हमें बहुत बड़ा अजर अता फरमाएंगे। ये आखिरत की तैयारी है। बस आज नियत करें कि आज से हमने गुनाहों को छोड़ दिया और आज के बाद हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। आपस में एक दूसरे के साथ अगर रंजिशें हों तो भाई माफ़ कर देना चाहिए। हदीस पाक में जो दुनिया में अपने मुसलमान भाई को जल्दी माफ़ करेगा, अल्लाह ताला आखिरत में उसको जल्दी माफ़ फरमा देंगे। जो दुनिया में दूसरे के ऐबों पे पर्दे डालेगा, अल्लाह आखिरत में उसके ऐबों में पर्दे डालेंगे। औरतों में कई दफ़ा रंजिशें हो जाती हैं, भाइयों में हो जाती हैं, तो इन बातों को लंबा नहीं करना चाहिए, जिद्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसको दुनिया में ही रफा दफा कर लेना चाहिए। आखिरत में हिसाब किताब अगर हो गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, बस दुनिया में एक दूसरे को माफ कर दे। अच्छा, कई मरतबा एक माफी मांगता भी है तो दूसरा जिद की वजह से माफ नहीं करता उसको, ये बहुत बड़ा गुनाह है। जरा गौर करना, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई बंदा किसी से माफी मांगे तो दूसरे बंदे को चाहिए कि जितनी बड़ी भी गलती हो चुकी है फौरन माफ कर दे। हदीस पाक में नबी सलाम ने फरमाया, अगर कोई बंदा दुनिया में दूसरे बंदे से माफी मांगे, अगर कोई बंदा दूसरे से दुनिया में माफी मांगे और वो आगे से जवाब दे कि मैं तुझे माफ नहीं करता, और वो आगे से क्या कहे कि मैं तुझे माफ नहीं करता, नबी सलाम फरमाते हैं कि उसको चाहिए कि वो हौज कौसर पे मेरे सामने मत आए। जो बंदा दूसरे को ये कहेगा कि मैं तुझे माफ नहीं करता, नबी सलाम फरमाते हैं उसको चाहिए कि वो हौज कौसर पे मेरे सामने मत आए। यानी क्या कहना चाहते हैं नबी सलाम? ये कहना चाहते हैं मैं हौज कौसर पे उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। आप बताएं, अगर हम माफ नहीं करेंगे और इसके बदले अल्लाह के महबूब से हम हमारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? तो हम माफी मांग भी लें और माफ कर भी लें और दुनिया ही में ये कर लें, आखिरत में माफी करवाना बहुत मुश्किल काम होगा, वहाँ कोई किसी को माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। अल्लाह ने हमारे लिए एक अमल बनाया है जिसको तौबा कहते हैं, वो अजीब नेमत है। अगर कोई इंसान कितना गुनहगार था, शराबी था, जानी था, बदमाशी की ज़िंदगी गुजार रहा था, नशे की ज़िंदगी गुजार रहा था, शरीयत कहती है सच्ची तौबा करके एक नई ज़िंदगी गुजारना शुरू करे, अल्लाह ताला पिछले सब गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे और आइंदा उसको अल्लाह ताला नेकोकारी की ज़िंदगी नसीब फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें भी नेकी की ज़िंदगी अता फरमाए। बहुत दुआ है, हाजी साहब की वफ़ात हुई, अल्लाह ताला उनको जन्नत का आला मकाम अता फरमाए। वो एक नेक इंसान थे और उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा की हुई थी। बहुत लोगों से मेरी अपनी ज़ाती मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन मैंने लोगों से अच्छे तज़किरे सुने हैं। और हदीस पाक में है कि जो बंदा इतना अच्छा हो कि उसके मरने के बाद 40 बंदे उसकी तारीफ करें, अल्लाह उस बंदे को जहन्नम से बरी फरमा दे। उनके तो हज़ारों लोग हैं तारीफ करने वाले कि अच्छे इंसान थे, माशाल्लाह मदारिस का ख्याल रखते थे, तआवुन करते थे, उलमा का एहतराम करते थे, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आते थे। दुआ है अल्लाह ताला उनकी औलाद को आपस में इत्तेफाक अता फरमाए, आपस में मोहब्बतें अता फरमाए, और ये जो छोटे मोटे एक दूसरे के साथ रंजिशें होती हैं आपस में इसको ख़त्म करके मोहब्बत प्यार की ज़िंदगी गुजारे, ताकि अल्लाह ताला आने वाले वक्त को गुजरे वक्त से बेहतर बना दे। अल्लाह ताला बहन भाइयों के दरमियान उल्फतें मोहब्बतें पैदा फरमा दे। और हाजी साहब की अहलिया, उनके लिए इतनी बात है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि हमें जब कोई बंदा फौत हो जाए तो ये पढ़ना चाहिए, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। इसके पढ़ने से दिल को सुकून मिल जाता है, तसल्ली मिल जाती है। वाकई सच्ची बात है, औलाद भी गमजदा है, लेकिन सबसे ज़्यादा घर में जो गमजदा होगा वो तो उनकी शरीक हयात है, जो उनकी बीवी जिसने बन के ज़िंदगी गुजारी। इतनी कमी तो कोई महसूस नहीं करेगा जितनी कमी वो महसूस करेंगी, मगर उनके लिए भी यह है कि वो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़ती रहेंगी तो अल्लाह उनके दिल को सुकून देंगे। अच्छा, मैं चंद मिनट में इसका आज तर्जुमा समझा दूँ, मौका बन ही गया कि इन्ना लिल्लाह का मतलब यह है कि हम अल्लाह के हैं। इन्ना लिल्लाह का क्या मतलब है? हम अल्लाह के हैं, यानी अल्लाह हमारा मालिक है, वो खालिक भी है मालिक भी है। अच्छा, जब कोई मालिक होता है ना तो फिर मालिक को हर इख्तियार होता है। आप देखें, आप घर में एक जूस की बोतल लाते हैं, अब आपको इख्तियार है, आप उसे चाहे तो बाहर टेबल पे रख दें, चाहे तो फ्रिज के निचले दरवाजे निचले हिस्से में रख दें, चाहे तो उसको फ्रिज के ऊपर के दर्जे में रख दें। कोई आपसे नहीं पूछ सकता भाई आपने इसको यहाँ क्यों रखा, भाई मैं मालिक हूँ, मैं लेके आया हूँ, मैं जहाँ रखूँ मेरा इख्तियार है। इसी तरह अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह का इख्तियार है, वो चाहे तो हमें दुनिया में रखे, चाहे तो हमें दुनिया से आगे ले जाए, मालिक जो हुआ। तो जब हम कहते हैं इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के हैं, तो हम ये इकरार कर रहे होते हैं ए अल्लाह आप हमारे मालिक हैं, आपको इख्तियार है, जिसको चाहें आप यहाँ रखें, जिसको चाहें अपने पास बुला लें। कोई इतराज़ नहीं कर सकता, फलाँ को तो जल्दी मौत आ गई, फलाँ को तो बच्चे को मौत आ गई, फलाँ को जवानी को, भाई बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, जब है अल्लाह का तो अल्लाह जहाँ चाहे उसको रखें, उसका इख्तियार है। तो इन्ना लिल्लाह कह के दिल को सुकून हो जाता है कि जिसकी वफ़ात हुई वो अल्लाह की मर्ज़ी थी, ठीक वक्त पे हुई, ठीक हुई। फिर उसके बाद अगला फिक्र है वह इन्ना इलैहि राजिऊन, और हमने अल्लाह ही की तरफ लौटना है, ये फिक्र समझने वाला है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाऊं। हमारे घर में एक बच्ची है, पोती है मेरी, हन्नाना उसका नाम है। जब वो 2 साल की थी ना, उसको अपनी दादों से बहुत मोहब्बत, ओह इंतहा दर्जे की मोहब्बत, उनके बगैर नहीं वो रहती थी। चुनाचे अगर कभी दादों ने सफर पे जाना होता, इधर उधर होता, तो वो पीछे रो रो के हशर कर लिया करती थी। एक मरतबा उम्रे पे जाना था तो हम निकल गए, तो सोई हुई थी। जब उठी और उसने देखा कि दादो नहीं है, वो इतना रोई, इतना रोई कि उसको रोता देख के घर के सब लोग रो पड़े, घर सब लोग रो पड़े। और वो रोते हुए ये कह रही थी, जब दादो को पता है कि मैं उनके बगैर इतना रोती हूँ, मुझे साथ क्यों नहीं लेके जाती। वो 2 साल की छोटी सी बच्ची थी और समझ में नहीं पाती थी कि भाई ये सफर तो रहता ही है जिंदगी में इंसान के। तो हमने फिर फैसला किया कि भाई अब हम इसको हज उम्रे पे अपने साथ ही रखा करेंगे, अलग नहीं करेंगे, इसका रोना हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो हमने टिकटें बुक करवाई। अल्लाह की शान के सफ़र ऐसा बना कि हमें 1 महीना पहले घर से निकलना पड़ा। हमने पहले किसी मुल्क जाना था और वहाँ से हमने हज पे जाना था। हमने टिकटें बुक करवा दी और हमने उसे भी बता दिया कि देखो हज पे आप भी साथ जाएंगी, लेकिन हमारी फ़्लाइट 1 महीना पहले है, तुम्हारी फ़्लाइट 1 महीना बाद में है, मगर हम इकट्ठा हज करेंगे। उसको तसल्ली हो गई। अब जब हम घर से निकलने लगे तो वो जाग रही थी और मुस्करा रही थी और खुश हो रही थी, और वो आराम से उस वक्त खड़ी थी, रो नहीं रही थी। तो मैंने उससे पूछा, हनाना आपकी दादो जा रही हैं, आप रो नहीं रही? तो वो मुस्करा के कहने लगी, दादा बू दादो की फ़्लाइट आज है, हमारी फ़्लाइट आफ्टर 1 मंथ है, हम भी वहीं हज पे आ जाएंगे, मुलाकात हो जाएगी दादो से। तो मुझे दिल में ख्याल हुआ कि देखो जब इस बच्ची को ये एहसास है कि जाने वाले जा रहे हैं और थोड़े दिनों में मैंने भी आगे चले ही जाना है, तो अब इसके लिए ये जुदाई कोई गम नहीं है, ये आसानी से खुश होकर अलविदा कर रही है। यही मामला है कि जब वो कहते हैं इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के हैं, यानी जिसको अल्लाह ने बुलाना था उसको तो अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, मगर आगे हम कहते हैं वह इन्ना इलैहि राजिऊन, हमने भी आगे जाना है। इसका मतलब ये कि हम कह रहे होते हैं भाई फ़्लाइट तो हमारी भी है, लेकिन आज नहीं, आज इनकी थी, कुछ दिनों बाद हमारी है, हम आगे जाके इकट्ठे हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इसलिए फिर इसके पढ़ने से बंदे के दिल पे गम नहीं होता कि ये जुदाई अधूरी है या थोड़े दिनों की है, फाइनल तो हमने इकट्ठे हो ही जाने आगे जन्नत में। तो अल्लाह ताला जन्नत में हम सबको इकट्ठा फरमाए और हमें अल्लाह अपनी रजा अता फरमाए। व आखिर दुआना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
जी तौबा के कलमात पढ़ा दूंगा साथ ही।
दुआ से पहले दिल में नियत कर लीजिए कि हम अपनी ज़िंदगी के पीछे सब गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा कर रहे हैं और आइंदा निकोकारी की ज़िंदगी गुजारने का इरादा कर रहे हैं। जैसी नियत होती है वैसी मुराद मिल जाती है। अगर औरतों तक आवाज़ जा रही है तो औरतें भी दिल में तौबा की नियत करके ये कलमात पीछे पीछे पढ़ती जाएँ, वो भी तौबा में शरीक हो जाएंगी। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
والبعث
بعد الموت
بعد الموت
آمنت بالله
آمنت بالله
كما هو
كما هو
بأسمائه
بأسمائه
وصفاته
وصفاته
وقبلت
وقبلت
جميع
جميع
أحكامه
أحكامه
إقرار باللسان
إقرار باللسان
وتصديق بالقلب
وتصديق بالقلب
أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله
إلا الله
إلا الله
وأشهد
وأشهد
أن محمدا